نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. آج إن شاء الله تعالى ہم سورة توبة آیت نمبر 29 سے 37 تک کریں گے. دیکھتے ہیں ہم اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں آیت 1 سے 6 تک. ہم نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مشرکین کے بارے میں کیا انسٹرکشن تھی وہ ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد ہم نے اور عمومی طور پہ جو جنگ کے بارے میں جو بعض احکامات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے. اس کے بعد دوبارہ اسی جو 1-6 آیات تھی انہی کی طرف واپس اسی ٹائمنگ میں یہ آیات اتری جو بعد میں ہم نے پڑھی تھی. یعنی بیچ کا ٹائم جو بیچ کی آیات ہیں فتح مکہ سے پہلے اور جو شروع اور جو بعد کی آیات ہیں وہ فتح مکہ کے بعد. تو اب ہم دیکھ رہے تھے اس میں کہ جب مکہ فتح ہو چکا ہے تو اس کے بعد مشرکین کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے. جیسے کہ 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی کہ آپ سوچ لیں، آپ سمجھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آگے. اگر تو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے تو وہ بھی راستہ ہے، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہاں سے چلے جائیں، یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ نے جانا بھی نہیں ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو قتل کر دو. تو یہ احکامات ہم نے دیکھ لیے. اب وہاں پہ جہاں مشرکین مکہ رہتے تھے تو ارد گرد میں اہل کتاب بھی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے؟ کیونکہ اور بھی تو لوگ تھے، صرف یہی مشرکین مکہ تو نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے. تو اہل کتاب کا خاص طور پہ کیا معاملہ ہوگا؟ اب ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کو کیا آپشنز دی گئی ہیں جزیرہ عرب میں رہنے کی. فرمایا قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ نمبر 1 جو کیا کرتے ہیں، لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے. نمبر 2 ولا بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان نہیں رکھتے. نمبر 3 ان کا کیا جرم ہے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، وہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جو حرام کیا اللہ نے ورسولو، اور اس کے رسول. اللہ رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو حرام ہی نہیں مانتے. ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین ہی نہیں بناتے. من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، ان لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو ان سے جنگ کرو کیونکہ یہ کام نہیں کرتے. حتی کب تک جنگ کرو؟ حتی یعط الجزیہ عن ید، حتی کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے دیں. وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کے رہیں. یعنی یہاں پہ پہلی مرتبہ مشرکین کے علاوہ، مشرکین سے تو جنگ پہلے بھی ہو چکی تھی لیکن اب یہود و نصارہ کی خبر لینے کا کہا گیا کہ ان سے بھی اب جنگ ہوگی. یہ پہلی آیت ہے اس بارے میں. اس وقت تک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اب ان کے بارے میں حکم دے دیا گیا، یہ بھی 9 ہجری میں ہی اترا. تو यानी ये एक रोमियों से जंग की तैयारी के बारे में बात हो रही है, और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये एक तरह से तमहीद है जंगे तबूक की, इसके बाद जंगे तबूक हुई थी, जिसमें आपने अगर सीरत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से जिहाद की तैयारी की, लोगों को बाकायदा बताया, मदीना के इर्द गिर्द के अरबों को भी इस चीज़ में साथ शामिल किया, और तकरीबन 30,000 का लश्कर लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम का रुख किया, सिवाय मुनाफिकीन के और कोई नहीं रुका था। और मौसम उस वक्त बहुत सख्त गर्म था, फलों का उतरने का वक्त था, और रास्ता भी बड़ा, सफ़र भी बड़ा कठिन था। अब तबूक तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके गए, वहाँ तकरीबन 20 दिन क़याम किया, फिर उसके बाद वापस लौट आए, क्योंकि आगे से वो आए ही नहीं लड़ने के लिए। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनसे भी लड़ाई होगी, कब तक लड़ाई होगी, या तो वो मुसलमान हो जाए, तो मुसलमान नहीं होते, ये एक यानी किसी भी टाइम के अंदर जब भी कहीं इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो उसके अंडर अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो वो कैसे रहेगा, उसके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि या तो वो मुसलमान हो जाए, अगर नहीं मुसलमान होते कोई मसला नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, फिर मुसलमान नहीं होते तो अपने हाथों से जिजिया दें, ठीक है। जिजिया क्या होता था, एक तरह का टैक्स होता था इस चीज़ के ऊपर कि अब इस्लामी हुकूमत आपकी जान माल इज्जत सब की हिफाजत करेगी, तो वो आपसे टैक्स लेगी। मुसलमानों से इस तरह से नहीं लिया जाता, मुसलमान तो ज़कात देते हैं और अल्लाह ताला से अजर भी पाते हैं, लेकिन जो गैर मुस्लिम है इस्लामी हुकूमत के अंदर रहना चाहते हैं तो वो फिर ये जिजिया दे के रह सकते हैं, और इन रिटर्न उनको भी यानी सिक्योरिटी मिलेगी, हुकूमत उनको सिक्योरिटी देगी उनके माल जान इज्जत की, और अगर वो ये भी नहीं देना चाहते तो फिर उनके साथ जंग होगी। तो इससे हमें यहाँ पे भी पता चलता है कि उनको कहा गया कि मुसलमानों को कि अब दूसरे काफरों की तो सारी टेकन केयर ऑफ हो गए हैं, अब जो अहले किताब है उनके साथ क्या होगा। अच्छा, अब आप देखें कि मुशरिकीन ने मक्का को जिजिया की ऑप्शन नहीं दी गई थी, इसलिए कि उन पर हुज्जत तमाम हो गई थी ना, उनके पास अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ़ लाए और उनको समझाया और इतने अरसे तक उनसे बातचीत की, इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, तो उनकी तकजीब के ऊपर, वैसे तो पिछली कौम में थी तो अजाब इलाही आ जाता था, लेकिन इनके ऊपर नहीं आया, इनको एक तरह से रायत दी गई क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थे, तो इनको रायत बख्शी गई कि इनको किसी चीख से, किसी और जलजले से, किसी और तरह से इनको नहीं ख़त्म किया गया, बल्कि इनको मोहलत दे दी गई 4 महीने की, ठीक है। बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई पनाह भी मांगता है मुसलमान से तो उसको पनाह भी दे दो और उसको दीन सिखाओ, समझाओ, ठीक है। अब यहाँ पे दीगर लोगों के साथ क्या मामला होगा वो यहाँ बताया गया, सही। और कब तक लड़ना है, जब तक वो जिजिया ना दे दें अपने हाथों से, जिजिया दे के और छोटे होके ना रहे, यानी ऐसे होके ना रहे कि फर्स्ट फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट दर्जे के शहरी नहीं बन के रहेंगे, सेकंड डिग्री के शहरी बन के रहेंगे, इस पे राजी हो जाएं, ठीक है। अब सेकंड डिग्री के शहरी बनने का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब है जो जो वैसे तो जो सहूलतें, जो अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों के पास हैं, वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ इनको भी, इनके भी जान माल इज्जतों की हिफाजत की जाएगी, लेकिन उस तरह से ये अपने दीन को प्रोमोट नहीं कर सकते, उस तरह से ये कुछ रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर रहेंगी, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। मिसाल आपके सामने बताती हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या हुआ था, उनके दौर में भी ऐसे फतूहात जो हुई थी तो वहाँ पे जो गैर मुस्लिम रहना चाहते थे उन्होंने ऐसी इस तरह की शर्तें उनके ऊपर आयद की थी। और वो क्या थी, अब इससे पता चल जाएगा आपको कि सागिरून से क्या मतलब है, छोटे होके रहने से क्या मतलब है। तो उन्होंने अपने लिए अपने एक अहदनामा लिखा, और ये जो अहदनामा था इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये, यानी ये गैर मुस्लिमों की तरफ से था कि जब आपके लश्कर हम पर आए, हमने आपसे अपनी जान माल और अहलो अयाल के लिए अमन तलब की, हम इन शर्तों पर वो अमन हासिल करते हैं, यानी अब आप हमें हमारी जान माल, हमारे घर वाले आपसे महफूज रहेंगे, हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। किन शर्तों पे, हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से क्या होगा कि हम अपने इन शहरों में और इनके आसपास कोई गिरजा घर और कोई खानका नई नहीं बनाएंगे, यानी अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप नई नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारे तो आजकल ये हाल है ना कि हमारे तो माशाल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के जगहें दी जाती हैं कि आप यहाँ पे अपना मंदिर बनाएं, और बड़े बड़े मंदिरों की उनको इजाज़त मिलती है मुसलमान मुल्कों में, और आपने देखी ही होंगी तस्वीरें फिर बनते हुए भी, और कैसे फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं। तो उनको कहा गया कि आप जब रहेंगे तो आप कोई गिरजा नहीं, चर्च नहीं बना सकते, कोई अपने मंदिर और ना कोई ऐसी और अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं बनाएंगे, ना ऐसे किसी खराबी वाले मकान की इसलाह करेंगे, यानी फिक्स भी नहीं करेंगे उसको, जो पहले से हैं जो मिट चुके हैं उनको सही नहीं करके ठीक करके खड़े कर देना, इनमें अगर कोई मुसलमान मुसाफिर उतरना चाहे तो रोकेंगे नहीं, चाहे दिन में उतरे चाहे रात में। उस वक्त तो मुसाफिर होते थे ना, तो आते थे, होटल तो होते नहीं थे, तो वहीं पे वो लोग यानी रात गुजारने के लिए या दिन ठहरने के लिए वो ऐसी जगहों पे ही आते थे। हम इनके दरवाजे राह गुजर और मुसाफिरों के लिए कुशादा रखेंगे, यानी हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, और जो मुसलमान आए हम उसकी 3 दिन तक मेहमान नवाजी करेंगे। हम अपने इन मकानों या रिहायशी मकानों वगैरह में कहीं किसी को जासूस नहीं छुपाएंगे, यानी अपने घरों में और ना ही इन अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप में मुसलमानों से कोई धोखा नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कुरान नहीं सिखाएंगे, शिर्क का इजहार नहीं करेंगे, ना किसी को शिर्क की तरफ बुलाएंगे, यानी वो अपने जिस मजहब में भी हैं उसकी तबलीग नहीं करेंगे, उनको ये इजाज़त नहीं कि वो घर घर जाके तबलीग शुरू कर दें। और ऐसे सुना गया है कि कई हिंदुओं ने कुछ ऐसे मुल्कों में, अरब मुल्कों में अपनी कंपनीज में उन्होंने डोनेशन भी मांगा अपने मंदिर के लिए, और बाकायदा वो इनवाइट करते हैं कि आए हमारा ये देखें मंदिर जो हमने बनाया। हम में से कोई अगर इस्लाम कबूल करना चाहे तो उसको हरगिज नहीं रोकेंगे, और हमारे मुल्क में ये कानून पास होने वाला है अब कि 18 से बिलो, अंडर 18 कोई भी अगर इस्लाम कबूल करे तो वो नहीं कर सकता। आप देख लें कि ये हमारे इस्लामी मुल्कों का क्या हाल है। मुसलमानों की तौकीर और इज्जत करेंगे, हमारी जगह अगर वो बैठना चाहें तो हम उठकर उनको जगह देंगे, हम मुसलमानों से किसी चीज में भी बराबरी नहीं करेंगे, नकल नहीं उनकी करेंगे, यानी ना लिबास में, ना जूती में, ना मांग निकालने में कि उनके जैसे बन बन के दिखाएं, क्यों जाहिर है जो जो हुकूमत में होते हैं उनके जैसे वो भी बन के रहना चाहते हैं ताकि उनके साथ ही गड़मड़ हो जाए और पता ही ना चले। हम उनकी जुबानें नहीं बोलेंगे, उनकी कुन्नियतें नहीं रखेंगे, जीन वाले घोड़ों पर सवारियां नहीं करेंगे, तलवारें नहीं लटकाएंगे, ना अपने साथ रखेंगे, अंगूठियों पर अरबी नक्श नहीं कराएंगे, क्योंकि ये भी मुसलमानों की एक निशानी है ना, शराब नहीं बेचेंगे, ठीक है, सलीब का निशान, ये जो क्रॉस का निशान है, अपने गिरजों पे जाहिर नहीं करेंगे, अपनी मजहबी किताबें मुसलमानों की गुजरगाहों और बाजारों में जाहिर नहीं करेंगे, यानी ये ले लेके खड़े में जैसे अपना मटेरियल वो लेके खड़े नहीं होंगे स्ट्रीट्स में कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, गिरजों में नाकूस बुलंद आवाज से नहीं बजाएंगे, जो ये लोग जो अपने बजाते ना घंटियां सी, ना मुसलमानों की मौजूदगी में बावाज़े बुलंद अपनी मजहबी किताबें पढ़ेंगे, ना अपने मजहबी शार को रास्तों पर करेंगे, यानी जैसे निकल के वो कोई अपना जुलूस निकालने शुरू हो जाए या अपना कुछ और अपनी
क्रिसमस की चीजें हैं, सेंटा क्लॉज है, ये क्रिसमस ट्री है, ये रास्तों पे लगाना या रास्तों में रखना। और उन्होंने तो क्या रखना है, आजकल हमारे अपने मुसलमान खुद रखते हैं, एयरपोर्ट्स पे रखा जाता है, जो कि मैंने खुद देखा, और भी बहुत सारी जगहों पर लगाए जाते हैं बाकायदा। और तो और क्या, छोड़े और बातों को, तो अपने घरों में बाज लोग रख लेते हैं, यह उनके लिए कहा गया था कि वो नीचे होके रहें। और आज इसमें हमें फख्र है, उम्मते मुस्लिमा का हाल सोच लें कि क्या है, कि इसमें हमें फख्र है कि हम उनकी चीजें लाके अपने घर में सजाएं, जो उनकी रिलीजियस चीजें हैं, जो उनके रिलीजन को डिपेक्ट करती हैं। अल्लाह अकबर। ना अपने मुर्दों पर ऊंची आवाज से हाय वाय करेंगे, ना उनके साथ मुसलमानों के रास्तों में आग लेकर जाएंगे। मुसलमानों के हिस्से में आए हुए गुलाम हम नहीं लेंगे। मुसलमानों की खैरख्वाही जरूर करते रहेंगे, उनके घरों में झांकेंगे नहीं। जब ये अहदनामा हज़रत उमर की खिदमत में पेश हुआ, तो आपने एक और शर्त भी इसमें बढ़ा दी कि हम किसी मुसलमान को हरगिज नहीं मारेंगे। तो ये उन्होंने शर्तें खुद लिख के भेजी थी कि ये हमारी, हम इन शर्तों पे आपसे अमान लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये सारी शर्तें हमें कबूल और मंजूर है, और हमारे सब हम मजहब वालों को भी इन्हीं शराइत पे अमन मिला है। अगर इनमें से किसी एक शर्त को भी हमने नहीं माना, उसको तोड़ा, तो हमसे आपका जिम्मा अलग हो जाएगा, जो कुछ आप अपने दुश्मनों से करते हैं वो सारे चीजें आप हमसे कर सकते हैं, हम फिर उसके मुस्तहिक होंगे, यानी फिर हमारी जान माल की कोई हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है अगर हमने ये तोड़ा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से गैर मुस्लिम इस्लामी हुकूमतों में रहा करते थे, और आज के क्या हालात हैं। मुमलिकतें तो हमने नाम की बना ली कि इस्लामी मुमलिकत, और नाम जोड़ दिए साथ, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब एक यहाँ पे अहम बात है कि कहा जा रहा है कि इनसे लड़ो इसलिए क्योंकि ये चार काम नहीं करते। वो क्या काम है? पहला काम ये है कि वो अल्लाह पे ईमान ही नहीं रखते। हालांकि अगर आप देखें तो वो तो कहते हैं कि गॉड को मानते हैं, फिर ये क्यों कहा गया अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? इसलिए कि अल्लाह पर ईमान रखना वैसा जरूरी है जैसे कि पैगंबर ने बताया। ये नहीं है कि खुद ही अपने घड़ लिया कि भाई ईमान रखना ये है कि उसका कोई नाऊज़ु बिल्ला बेटा भी है, उसकी कोई बेटियां हैं, या उसके साथ फलां फलां शरीक है। ये तो फिर अपने बनाए हुए अकीदे हो गए, खुद घड़े हुए हैं, खुद साख्ता है ना, यानी खुद ही डिजाइन किए हुए हैं ना। अब ऐसे अकीदे को लेकर तो नहीं आप कह सकते कि ये ईमान है। अल्लाह पर ईमान जैसा पैगंबरों ने बताया वैसा ही मतलूब है, वैसा ही रिक्वायर्ड है। अगर उसे इधर उधर हटे तो चाहे कोई अपने आप को मुसलमान ही क्यों ना कहता हो, उसका कोई ईमान नहीं है। अगर वो शिर्क करता है तो उसके पास क्या ईमान रहेगा? देखिए, इनको भी कह दिया गया आपका ईमान है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी अकीदों को ईमान नहीं कहा जाता। ये बहुत जरूरी बात है हमारे समझने के लिए, इसलिए कि देखें ईमान की डेफिनेशन आप कहाँ से समझेंगे? वो मैं नहीं बनाऊंगी, वो कोई और नहीं बना के आपको देगा। ईमान वो है जो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि ये है ईमान, अल्लाह पर ईमान ऐसा होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे ना, इसीलिए अल्लाह ने किताबें उतारी कि आपको पता चले कि क्या होता है अल्लाह पर ईमान। अब अगर वैसा ईमान नहीं रखते और कहीं और जाके शिर्क कर रहे हैं, और कहीं और जाके सर सजदों में डाल रहे हैं, और कहीं और जाके दुआएं कर रहे हैं, और कहीं और किसी को अपना सब दाता और मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझ रखा है, तो क्या ये वो ईमान है जैसा पैगंबर लेकर आए थे? खुद बताइए। लेकिन ईमान के हम दावेदार बहुत हैं, हम तो बड़े ईमान वाले हैं, हम तो मोमिन हैं। ऐसा ईमान अल्लाह को मतलूब नहीं है। ईमान वो लेकर आओ जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के जरिए बता दिया। अदरवाइज चाहे आप उसको कितना भी ईमान 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 कहते रहे ना, वो ईमान नहीं है। वला बिल योमिल आखिरी, और ना आखरत के दिन पर ईमान रखते हैं। अब उनसे पूछो, वो कभी भी नहीं ये कहते कि हम तो डे ऑफ जजमेंट को मानते हैं, हम तो नहीं, हम कहते कि हम गॉड को मानते हैं। कौन अपने मुंह से कहता है? कोई भी नहीं कहता। हम आखरत के दिन को भी मानते हैं, लेकिन क्या आखरत के दिन को वैसा मानते हैं जैसा नबी ने बताया? नहीं। इनके नजदीक ये भी था, मुशरिकीन मक्का ने तो बहुत ही तरह के अपने अकीदे बनाए हुए थे, ये कहते थे कि आखरत का दिन जो है ना, कयामत का दिन, वो ऐसा नहीं है कि हम अपनी बॉडीज के साथ खड़े होंगे, अपने जिस्मों के साथ खड़े होंगे और जिंदा किए जाएंगे, वो एक स्पिरिचुअल सा होगा। स्पिरिचुअली आप, जैसे आपकी रूह अच्छी उसके अंदर है तो जन्नत है, बुरी कंडीशन में है तो जहन्नुम है, बस इस तरह की चीजें होंगी। ऐसे नहीं है कि जिस्मों को खड़ा किया जाए, फिर मतलब हम अपने जिस्म के साथ जन्नत में जा रहे हैं या कोई अपने जिस्म समेत जहन्नुम के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो यानी वो भी अपनी तरफ से ही बनाए हुए अकीदे, खुद ही घड़े हुए थे ना, जबकि आखरत का अकीदा तो ये है ही नहीं। ईसा अलैहि सलाम ने इनको ये तो नहीं बताया था, मूसा अलैहि सलाम ये तो नहीं बता के गए थे। इसी तरह नबी अलैहि सलातो वसलाम ने जो हमें अकीदा आखरत के बारे में बताया हुआ है, अगर हमारा वो अकीदा नहीं है और हम खुद ही बना के बैठ गए। किसी मुसलमान की बात बता रही, उन्होंने कहा कि देखें, अब ये मैंने अपने कानों से ना बातें सुनी हो तो मुझे शायद नहीं यकीन आए, अगर कोई बताए नहीं मुझे बताए तो उन्होंने कहा, देखिए जी, ये जो आखरत है और आप जन्नत जहन्नुम की इतनी बातें करते हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस जो आप दुनिया में अच्छा आपको मिल जाता है ना, वही आपकी जन्नत है। दुनिया में किसी को मुसीबतें पहुंच रही, वही उसकी जहन्नुम है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस, ये तो सिर्फ आपको इसलिए ताकि आप अच्छे बन के रहें तो आपको एक डरावा दिया गया कि कयामत का दिन। यानी ये मुसलमान की जुबान से आप देखिए, इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ भी कयामत के दिन के बारे में या आखरत के बारे में कॉन्सेप्ट्स दुरुस्त नहीं है। हमने भी अपनी अपनी ख्यालात सोचों से चीजें बना ली, या जो किसी ने बताया या जो किसी ने कहा, बस वही सुनी सुनाई बातों को अकीदा बना लिया। क्या ये अल्लाह के यहाँ एक्सेप्टेबल होगा? खुद बताइए। और दावे हमारे ये हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान, नहीं, ईमान भी वो जो नबी लेकर आए, और आखरत पे, चाहे अल्लाह ताला पे, चाहे फरिश्तों पे, चाहे रसूलों पे, चाहे किताबों पे, चाहे तकदीर पे, ईमान वो ही एक्सेप्टेबल होगा जो ईमान अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया। याद रखिए, इसके अलावा ईमान, ईमान की जितनी मर्जी आप गर्दाने करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, मोमिन ईमान वाली मैं ऐसे वैसे, ईमान नहीं है ये। फिर इनका तीसरा जुर्म क्या है? वला युहर्रिमूना, और नहीं वो हराम ठहराते। किस चीज को? जिसको अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम ठहराया, उसको ये हराम नहीं ठहराते। यानी अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों को बता दिया कि ये हराम है, मसलन सूद हराम है, शराब हराम है, जिनाकारी हराम है, ये उसको कुछ समझते ही नहीं थे। और आज उम्मते मुस्लिमा उसका क्या हाल है? जिन चीजों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया, क्या उनको हराम ठहराते हैं, या बस अपनी ख्वाहिशात से चीजों को हलाल और हराम कर लेते हैं? रसूल की बात को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ कि हम तो हदीस को ही नहीं मानते। जब हदीस को ही नहीं मानते तो काफिर हो गए। जो शख्स हदीस का इनकार करता है वो काफिर हो जाता है। यहां पे बता दिया गया जो जिसको अल्लाह हराम करे, अब हम कहें हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं, यहां पे तो आया जो रसूल भी हराम करें वो भी हराम है। याद रखिए, जो हदीस में आ गया ना कि ये चीज हराम है, वो भी उसी तरह हराम है जैसे कि कुरान में अगर कोई चीज आ जाए कि ये हराम है। हदीस की ऐसी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी तरफ से कोई चीज हलाल और हराम नहीं करते थे जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से ना आ जाए। ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आया कि जो अल्लाह ताला ने हराम किया उसको हराम नहीं करते, यहाँ पे आया जो रसूल ने भी हराम कहा है उसको भी हराम नहीं करते। इसका मतलब रसूलों की दीवी तालीमात भी दीन है, दीन सिर्फ कुरान नहीं है, दीन हदीस भी है। ठीक है, वला यदीदूना दीन अल हक, और दीन हक को दीन नहीं बनाते, यानी दीन के अहकामात को ही नहीं मानते। दीन बस शोशा का नाम है, बस दिखावे का नाम है। दीन को, जिन चीजों को दीन कह रहे हैं वो तो अपनी तरफ से ही बनाई हुई चीजें, हक बात को तो दीन ही नहीं बनाते, अपनी तरफ से बातों को दीन बनाया हुआ ना। जो नबी लेकर आए उसको, वो दीने हक है, उसको नहीं दीन बनाते। और इनके नबी क्या दीन लेकर आए थे? ईसा अलैहि सलाम ने इनको क्या बताया था? उसको तो मानते ही नहीं। मीन अल्लादीना उतुल किताब, खास तौर पे ये उन लोगों की बात हो रही है जो उतुल किताब हैं, दिए गए किताब, यानी यहूदी और नसारा। ठीक है, अब इनसे लड़ो, कब तक लड़ो? हत्ता युतुल जिजियता अन यदिन, जब तक ये जिजिया ना दें दे अपने हाथों से, वो हम सागिरून और छोटे होके ना रहे। ठीक है, तो ये तो अहले किताब के बारे में बता दिया गया। अब समझ आ गई ये आयत? अब देखें, जब आप इस आयत को इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि क्या माना है, और इन आयत की रोशनी में हम अपना भी जायजा लिया करें। ठीक है, वकालत यहूद उजैर इब्न अल्लाह, यहूद कहते थे उजैर अल्लाह का बेटा है। वो क्यों कहते थे? इसकी एक वजह थी, उजैर अलैह सलाम अल्लाह के नबी थे, और जब इमालिका जो कौम थी बनी इसराइल पर गालिब आ गई, आपको पता है ये बनी इसराइल थे ना, यहूदी कौन है? बनी इसराइल, ठीक है, बनी इसराइल पर जब वो उन्होंने यानी हमला कर दिया, गालिब आ गए, तो इनके बड़े उलमा को कत्ल किया और बहुत इनके लोगों को कैद कर लिया। उजैर अलैहिस्सलाम इल्म उठ जाने पर और उलमा के कत्ल हो जाने पर और बनी इसराइल की तबाही पर इतने गमगीन होते कि वो उन्होंने जो रोना शुरू किया तो उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे, रोते रोते उनकी पलकें भी झड़ गई थी। एक दिन इसी तरह रोते हुए एक जगह से गुजर हुआ था, एक औरत एक कब्र के पास बैठी रो रही थी, कह रही थी हाय अब मेरे खाने का क्या होगा, मेरे कपड़े का क्या होगा। तो आप उसके पास ठहर गए और उससे फरमाया, इस बंदे से पहले तुझे कौन खिलाता था और कौन पहनाता था? उसने कहा अल्लाह। तो आपने फरमाया फिर अल्लाह तो हई और कयूम है, वो तो अब भी जिंदा है और बाकी है, उस पर तो कभी मौत नहीं है, वो जो पहले खिलाता था वही अब भी खिलाएगा। तो उसने कहा ऐ उजैर, फिर ये तो बता कि बनी इसराइल के जो उलामा चले गए उनसे पहले बनी इसराइल को इल्म कौन सिखाता था? तो आपने फरमाया अल्लाह। उसने कहा फिर ये रोना कैसा? तो फिर समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इशारा आया। तो अल्लाह ताला ने इनका सीना खोल दिया, तौरात के बड़े आलिम बन गए। फिर बनी इसराइल में गए, उनसे फरमाया मैं तुम्हारे पास तौरात लाया हूँ। उन्होंने कहा हम आपको सच्चा समझते हैं तो आप बताएं। तो इन्होंने अपनी उंगली के साथ कलम को लपेट के और पूरी तौरात लिख दी थी। तो जब ये यानी तौरात तो गुम हो चुकी थी, अब जब इन्होंने तौरात लिखी तो वो लोग इतने मुतासिर हुए, उन्होंने कहा जब भी ऐसी कोई यानी खलके आदत चीज होती है ना, सुपरफिशियल यानी जो आम नॉर्म नहीं होती, उससे ज्यादा कोई चीज हो जाए तो लोग अक्सर इस चीज में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये तो कोई बहुत ही बड़ी हस्ती ऐसी है कि उनकी इज्जत, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत में इतने आगे गए कि उन्होंने यही कह दिया कि ये अल्लाह का बेटा है। तमाम यहूदी नहीं कहते मगर इनका एक्सेक्ट कहता है। तो फिर सबका क्यों कहा गया कालत यहूद? इसलिए कि वो जो एक फिरका तो कहता है लेकिन बाकियों ने कभी ना उनको मना किया ना उनके साथ कोई उनको कोई प्रॉब्लम हुई कि ये क्यों ये कहते हैं, या इसको भी उन्होंने भी इंडोर्स ही किया। वो कालत नस्वार अल मसीह इब्नुल्लाह, और नस्वारा ने कहा, ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। अब इन्होंने क्यों कहा था? इसके पीछे भी ये बात है, देखें शुरू के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जब ईसा अलैहि सलाम उठाए गए तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, ये बाद में आई। और ये कैसे आई, ये आगे बात आ रही है, ज़ालिका कौलुहुम बी अफवाहिम, ये उनकी बातें हैं, उनके मुंहों की बातें हैं, ये इनके कहने से थोड़ी अल्लाह की कोई बेटा बेटी हो जाएगा, ये इनके मुंह की बातें हैं। युदाही ऊना कौल अल्लदीन कैफरू मिन कौम, ये असल में नकल कर रहे हैं उन लोगों की बातों की जो काफिर इनसे पहले आए थे, उनकी बातों की नकल कर रहे हैं। अब ये बात समझने की है कि किन की नकल इन्होंने की थी, ईसाइयों ने या ये हो यहूद ने, या क्या जो ये जो खुदा का औलाद ठहराते हैं, तो ये क्या बात थी। असल में क्या हुआ कि जब ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया गया, तो उनके बाद थर्ड सेंचुरी जो ईसवी थी उसमें, यानी ईसा अलैहि सलाम को गए हुए भी दुनिया से 250 गुजर चुकी थी, जब सेंट पॉल ने क्या किया, उसने इस मज़हब के अंदर नई से नई चीज़ें ईजाद की, और उसने ये ट्रिनिटी का यानी खुदा और उसकी बीवी और उसका बेटा, इस तरह का ये जो थ्री का ऐसे बनाते ना सर पे और साइडों पे भी ये ऐसे करते हैं, और यानी तीन में एक और एक में तीन, इस तरह का अकीदा जो इनका है ट्रिनिटी का, ये उस वक़्त ईजाद हुआ था। और वजह क्या थी, एक्चुअली जब ये दुनिया में निकले ना तबलीग करने के लिए, बड़े उससे निकले कि भाई हम खुदा के दीन को आगे पहुंचाएं, और मतलब एक तरह से जिसको हम कहते हैं दावत का काम देने करने के लिए दुनिया से गए थे, दुनिया में फैले थे। तो उस वक्त हुआ क्या कि इन्होंने देखा कि जो यूनानी है, ग्रीक, उनका ग्रीक में क्या था कि वो इस तरह से करते थे कि खुदा एक उसका बेटा और एक उसकी बीवी, और इस तरह का कॉन्सेप्ट उनके पास था। इन्होंने कहा कि भाई हम अपना दीन की जब तबलीग करेंगे तो हमारी दीन को एक्सेप्ट कोई कब करेगा, जब वो चीज़ पहले से माशरे के अंदर राइज होगी, तो ताकि लोग एक्सेप्ट कर लें, इसकी वजह से इसके लिए इन्होंने भी ये बना लिया कि खुदा एक उसका बेटा और एक उसकी बीवी और ऐसे करके बातें। और ये देखें, ये बहुत आम होता है कि जिस वक्त आप तबलीग करने के लिए निकलें, तो याद रखिए कभी भी इस चीज़ में नहीं आपने पढ़ना कि लोग किस चीज़ को मानेंगे, जब लोग जिस चीज़ को माने मैं वही बातें करना शुरू करूँ, नहीं, जो दीने हक आप लेकर निकले हैं ना उसी के ऊपर आपने कायम रहना है, दूसरे ने मानना है तो माने, नहीं मानना तो अपना रास्ता ले, आप नहीं हिलेंगे वहां से कि मैं जरा इसको ऐसा कर दूं, थोड़ा हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, मुझे चाहिए मैं ऐसी बात करूं कि जो इनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो जाए, नहीं, आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं कराना, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना होता है। यही बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं, और जब किसी सोसाइटी में लोग रहते हैं तो बहुत ये कॉमन बात है कि उन लोगों की चीजों को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, जैसे कि मुसलमानों में बाज ने ये अवतार के अकीदे को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो जैसे आगा खानी लोग कहते हैं कि जो इस वक्त जो हाजिर इमाम है, इसके ये अवतार है खुदा का, यानी तो खुदा ही उतरा हुआ है, खुद नहीं बदलना होता, लोगों ने ये हिंदुओं से लिया हुआ है अकीदा, अब उनके अकीदे से उनके अंदर ये चीजें अवतार की और इस तरह की मुसलमानों ने भी ले ली और अपना अकीदा का बेड़ा गर्क कर दिया। ये भी ईसाई जब दुनिया में निकले, जब इन्होंने तबलीग की, उनकी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद अपने अंदर वो ले आए ताकि हमारा दीन और फैले, उससे फैलाओ तो हो गया लेकिन उनकी बेस ही नहीं रही। ठीक है ना, ये दीन जो होता है ना, ये हमारी अपनी मर्जियों से नहीं होता। अभी हम क्या बात कर रहे हैं ईमान की, ईमान भी हमारी अपनी मर्जी का नाम नहीं है कि हम जो मर्जी हमारे दिमाग के अंदर आए वो हम अकीदा घड़ लें, वो हम सोच लें, मेरी सोच में ये आया तो मैंने ये सोच लिया, नहीं, ईमान जो है ना एक कॉन्शियस बिलीफ का नाम है, कॉन्शियसली। और हर चीज में आप जब अल्लाह ताला के रेफरेंस से चीजों को देखने लगते हैं ना, तो फिर आपके कॉन्शियस में अल्लाह ताला का एहसास, वो यानी वो यकीन, वो ईमान, वो मान लेना, वो जगह पकड़ता है। क्या कैसे, मसलन है आपने एक फूल देखा, फूल की खुशबू है, अब खुशबू को आप किसके साथ रिलेट करेंगी कि अल्लाह तूने खुशबू इसके अंदर डाल दी, या फिर आप कहते हैं बड़ा प्यारा फूल है देखो इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, हर चीज को अल्लाह ताला के साथ अगर नहीं रिलेट करेंगे तो शऊरी ईमान नहीं आता। शऊरी तौर पे ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हर चीज को हम अल्लाह ताला के साथ अटैच करें। जो शऊरी तौर पर सोचता है ना ऐसे, उसके अंदर ईमान आता है, अदरवाइज एक अननोन हस्ती बन जाता है। ये अकीदा भी, क्योंकि ये हम कहते रहे कि हमारे अंदर ईमान है लेकिन कुछ भी नहीं ईमान, अननोन। हर चीज को किसी अननोन के साथ, भाई जलजला आया, हाँ बस वो आ गया क्योंकि वहां पे ऐसे ऐसे हालात हुए थे, वो प्लेट हिल गई, वो फलां हो गया, हरिकेन आया, उसके बाद सुनामी कोई आ गई, कोई कुछ आ गई, वो इसलिए आई क्योंकि ये ऐसा जलजला आया था। यानी हर चीज को किसी अननोन के साथ अटैच कर देना, तब ईमान अंदर नहीं बैठता। क्या ईमान सोच समझ के मानने का नाम है? याद रखिए, मैं एक मिसाल से समझे, आपके पास ये सेलफोन है ना, आप इसमें कोई नंबर सेव करते हैं और अगर उसको कोई नाम ना दे तो वो फोन खुद ही क्या नाम दे देता है? अननोन। अननोन के नाम से उसको सेव कर देता है। तो ये समझ लें कि दुनिया में जो कुछ भी आप पाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द है, अगर आप कॉन्शियसली इसको अल्लाह ताला के साथ अटैच नहीं करते ना, तो वो अननोन से सेव हो जाता है आपके माइंड में। मतलब ईमान नहीं है, इसको ईमान नहीं कहा जा सकता। अननोन जरूरी है कि ईमान वो हो अल्लाह ताला के साथ हर चीज को जोड़ा हो हमने। कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है, मैं बीमार होता हूँ, वो मुझे शिफा देता है, कि ना इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि बस खाना आता है, जॉब होती है तो खाना आता है और कंपनियां चलेंगी तो जॉब होगी, यानी अल्लाह ताला का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ईमान को भी अंदर बिठाने की जरूरत होती है, ईमान को भी मजबूत करने की जरूरत होती है, और ईमान को इस तरह रिफ्रेश करते रहने की जरूरत होती है, वरना मुरझा जाता है ये। अब इन इनके तो ये हाल हुए इन लोगों के, उनकी नकलें कर ली इन्होंने, जैसे हमारे लोगों ने हिंदुओं की नकलें कर ली। कितनी जगहों पे की ये नकलें, तो बताया गया ये लफ्ज इसीलिए है ना, युदाऊन है, नकल करते उनकी चीजों की जो काफिर इनसे पहले गुजर गए। हम तो उनके साथ ही रहते रहे इतना अरसा, तो जाहिर है कितनी नकलें की कि हर चीज में ही नकल कर दे, मरने जीने शादी ब्याह हर चीज में उनकी नकल, और आज तक कर रहे हैं। आज तक हमारी कितनी ही रस्में देख लें जो हिंदुओं से ली गई है और छोड़ने का नाम नहीं लेते। साल हा साल गुजर चुके लेकिन हम अपने आप को इस्लामी रस्म रिवाज पे लाने को तैयार नहीं, तो वो इतनी हमें प्यारी है। खातलहुमुल्लाहु अन्ना युफकून, अल्लाह की मार वो ऐसे शिर्क करने वालों पे जिन्होंने खुदा का औलाद ठहरा दी। अन्ना युफकून, कहाँ से ये फेरे जाते हैं, यानी इनको कहाँ से ये बात समझ आई कि खुदा का बेटा है कोई, अच्छी भली अक्ल होते हुए फिर कहाँ से भटक गए, कहाँ से फेरे जाते हैं, कहाँ से इन्होंने ये अकीदे ले लिए।